समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो नेहा। Hello and good afternoon to all our listeners. You're tuned to Parikrama on 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is my co-host Neha Goswami. And listeners, for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के बारे में कड़ा वैश्विक संदेश दिया है।
प्राइम मिनिस्टर सेज द हिस्टोरिक कॉन्वर्सेशन बिटवीन श्री नारायण गुरु एंड महात्मा गांधी गेव न्यू डायरेक्शन टू इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट।
इसराइल ईरान के साथ संघर्ष विराम पर सहमत, संघर्ष विराम के किसी भी उल्लंघन का पूरी ताकत से जवाब देने की चेतावनी दी।
U.S. President Donald Trump says the ceasefire between Israel and Iran is now in effect, urges both nations to uphold it.
पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच घरेलू शेयर बाजार में उछाल।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Samvidhan, Hatya Divas, and women and global diplomacy. So to start off with our first topic, tomorrow the nation observes Samvidhan Hatya Divas, a solemn reminder of a dark chapter in a democratic journey. It was on the night of 25th of June 1975 that the Constitution of India was virtually suspended, marking the beginning of what is widely remembered as the emergency, the darkest phase of independent India. For 21 months, civil liberties were suspended, democratic institutions were muzzled, and dissent was silenced. Even in those oppressive times, the spirit of democracy lived on in protest, in defiance.
जब देश में आपातकाल लगाया गया, तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है।
आपातकाल के दौरान सरकार ने प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी थी, शासन की आलोचना करने वाले समाचार पत्रों के विज्ञापनों पर रोक, शटडाउन नोटिस, यहां तक कि उन्हें कर छापे का सामना करना पड़ा था और वहीं उनके पत्रकारों को अन्यायपूर्ण गिरफ्तारियां झेलनी पड़ी। जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और मधु दंडवते सहित विपक्षी नेताओं को निवारक निरोध कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया। देश भर में लोगों को बिना किसी आरोप के जेल में डाल दिया गया। उनकी आवाजों को विवादास्पद आंतरिक सुरक्षा अधिनियम या मिसा के तहत दबा दिया गया।
25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा, इस आत्मा को कुचल दिया गया, देश के मीडिया को दबोच दिया गया।
A time when fear ruled the streets and silence echoed through the press rooms, the Nav Nirman agitation in Gujarat, the JP movement in Bihar, and the railway strike led by George Fernandez all stood as beacons of resistance. That now iconic image of George Fernandez, handcuffed and shackled, raising his hands in defiance, became a symbol of the people's fight for justice.
आपातकाल के दौरान सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। कानून अवैध रूप से बनाए गए और स्वतंत्रता में अभूतपूर्व कटौती की गई। फिर भी इन सब के बावजूद संविधान और उसके मूल्यों के प्रति नई प्रतिबद्धता की रोशनी उभरी।
During the emergency, civil liberties were suspended and the government imposed a strict censorship on the press. The government choked critical newspapers by blocking advertisements. Journalists faced tax charges, press shutdown notices, and were also jailed. The emergency also witnessed the centralization of power and the mass arrest of opposition leaders, including Jayaprakash Narayan, L.K. Advani, Atal Bihari Vajpayee, Morarji Desai, Madhu Dandavati. These actions were met with widespread criticism and protests. Sharing his thoughts during Mann Ki Baat on Akashvani, Prime Minister Narendra Modi had described the declaration of emergency as a black spot on Indian democracy. The emergency period was marked by various political movements and events, including the Nav Nirman agitation in Gujarat, Jayaprakash Narayan's movement in Bihar, and the railway strike led by George Fernandez. Mr. Fernandez in handcuffs and shackles, raising his hand in defiance, is one of the most enduring photographs of the emergency era. People were detained without charges and there was illegal enactment of laws. The Maintenance of Internal Security Act, MISA, was the much abused statute. The era of emergency was the darkest period of independent India. On Parmish, Akashwani News, Delhi.
So to wind up, as we remember Samvidhan Hatya Divas, we pay homage to all those who suffered, resisted and rose, not with violence, but with courage, conviction and belief in democracy. Let this day be a constant reminder that the Constitution of India is not just a document, it is the lifeblood of a republic. And now moving on to our second topic in a Dateline section, Neha, that is women and global diplomacy. Today we also shine a spotlight on the subject of growing urgency and powerful promise, women and global diplomacy. Despite years of progress and powerful international commitments, women remain significantly underrepresented in diplomacy and political leadership. In fact, as of 2025, only 25 countries have a female head of state or government, and less than 23% of cabinet ministers globally are women, and even fewer hold critical portfolios like defense or foreign affairs. But change is on the horizon.
जी अभिषेक, आज का कार्यक्रम इसी बदलाव पर केंद्रित है. हम बात करेंगे विदेश नीति को आकार देने वाली साहसी महिलाओं की. वे बाधाएं जिनका वे सामना करती हैं, फिर भी वे कूटनीति का सही मायने में दुनिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए कैसे प्रयोग करती हैं. ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो कूटनीति का विषय पुरुषों के लिए आरक्षित रहा है. बंद कमरे में बातचीत, उच्च दाब शिखर सम्मेलन, शांति समझौते पर ज्यादातर सूट पहने पुरुषों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं. फिर भी 1992 और 2019 के बीच शांति वार्ताकारों में 13% पीस नेगोशिएटर, 6% मीडिएटर्स और शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में 6% महिलाएं रही हैं.
यस, एब्सोल्युटली नेहा. एंड फॉर इंस्टेंस, इन साउथ सूडान, एक्टिविस्ट एंड लॉयर सुजैन सबिट लेड अ कोएलिशन ऑफ 40 वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस इनटू पीस नेगोशिएशंस एंड द रिजल्ट, वेल, अ पीस एग्रीमेंट विद जेंडर रिस्पॉन्सिव प्रोविजंस. Now that's real impact. That's diplomacy redefined.
जी, दुर्भाग्य से हम प्रतिगमन के संकेत देख रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र महिला और मानवाधिकार परिषद के अनुसार लिंग संतुलित मंत्रिमंडल सिकुड़ रहे हैं. महिलाओं को अक्सर सामाजिक सेवाओं जैसे नरम विभागों में नियुक्त किया जाता है, जबकि विदेशी मामलों, रक्षा और वित्त जैसे क्षेत्रों में पुरुषों को अवसर दिया जाता है. इससे भी बदतर यह है कि राजनीति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बढ़ रही है, टारगेटेड हैरेसमेंट से लेकर फिजिकल थ्रेट्स तक. यह समस्याएं महिलाओं को ऑफिस की तरफ बढ़ने से या शीर्ष राजनयिक पदों पर जाने से रोक रहा है. यह एक राजनीतिक मुद्दे से कहीं अधिक है. यह एक मानवाधिकार मुद्दा है. यह शांति और न्याय के लिए एक वैश्विक जोखिम है.
Yes, but there's good news, Neha. Yeah, but here is hope. Bold solutions exist and they have been tested around the world. And here's what's working. Gender quotas in parliament and diplomatic missions, mentorship programs that prepare women for leadership, anti-harassment legislation that protects women in public life, and yes, the Beijing Platform for Action and the Sustainable Development Goals, SDG5, remain our North Stars. And let us talk about some India's trail-blazing women in diplomacy. In a world once dominated by men in suits and power corridors, these Indian women broke barriers, crossed continents and made their mark in the world of diplomacy. Let's begin with the woman who led the way, C.B. Muthamma. She joined the Indian Foreign Service in 1949, the first woman ever to do so. But her journey wasn't easy. She fought gender discrimination head-on, even challenging the system in court. And what about her legacy? Well, a path open for countless others. She went on to serve as India's ambassador to Hungary and The Hague.
जी, अब एक अग्रणी से दूसरे अग्रणी तक हम बात करेंगे निरुपमा राव की. उन्होंने कई तरह की बाधाओं को पार किया. विदेश मंत्रालय में भारत की पहली महिला प्रवक्ता बनी. वे श्रीलंका में पहली महिला उच्चायुक्त रही, चीन में पहली महिला राजदूत और अंत में विदेश सचिव बनी. शांत और सशक्त आवाज वाली निरुपमा राव तब से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर एक सम्मानित लेखिका और टिप्पणीकार बन गई हैं.
एब्सोल्युटली. एंड नाउ लेट्स शिफ्ट फोकस टू द यूनाइटेड नेशंस where Ruchira Kamboj is making history as India's first female permanent representative in New York. Diplomacy isn't always in front of cameras. Behind closed doors, women like Arundhati Ghosh stood firm as India's first permanent representative to the UN in Geneva. She defended India's nuclear stance with unmatched clarity during disarmament negotiations. And also Sneha Dubey, India's first secretary at the United Nations, is an Indian Foreign Service IFS officer of the 2012 batch. And she made headlines and received immense praise on social media for a response to the then Pakistan Prime Minister Imran Khan raking up the issue of Kashmir in his address to the UN General Assembly.
जी, ये सिर्फ कुछ ही महिलाएं थीं जिनके बारे में हम आपको बता पाए. ऐसी कई अन्य महिला राजनयिक हैं जो सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं, बल्कि वे सहानुभूति, शक्ति और बुद्धिमता के साथ कूटनीति को नया आकार दे रही हैं. वुमेन आर नॉट जस्ट आस्किंग फॉर अ सीट एट द टेबल, दे आर रीशेपिंग द टेबल इटसेल्फ टुवर्ड पीस, जस्टिस एंड इक्वालिटी.
एब्सोल्युटली नेहा. एंड सो टू वाइंड अप आवर डिस्कशन ऑन वुमेन एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी, Let's keep pushing forward to end stereotypical gender roles, because the future of diplomacy isn't male or female, it's inclusive. Stay bold, stay informed, and as always, keep your eyes on the horizon.
और समय है अब अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
The Coffee Board of India has partnered with the National Livelihood Mission to train 1 lakh women self-help groups to run coffee kiosks across Karnataka. We have more from a correspondent.
1 lakh women self-help groups in Karnataka will be provided a business model by Coffee Board of India under the National Livelihood Mission to be financially self-reliant. The self-help groups will be extended training and financial assistance to manage coffee outlets and earn revenue. This will also promote coffee culture across the state. The state government has also pitched in by allocating 25 crore rupees to set up 2,500 Akka cafes to be operated by the self-help groups. The Department of Skill Development, Entrepreneurship and Livelihood will help provide financial assistance to cover the cost of fabricating, installing and commissioning the coffee kiosk and also train the women in entrepreneurship. The project will be launched in two phases. In the pilot phase, 50 fully equipped cafes will be set up in urban and rural areas. These outlets will also serve regional snacks and meals. These will be modeled on the lines of two cafes already set up some time back in Gandhinagar and another in Devanahalli. The Atal Incubation Center of Coffee Board will train 400 women with the essential skills to prepare, filter coffee, manage and operate the enterprise. These women, once trained, will in turn train others at taluk and village levels. This program will transform the self-help groups from microfinance dispersal entity to confident micro-entrepreneurs. Sudhindra, reporting for Parikrama from Bengaluru.
हिमाचल में प्रदेश सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिससे महिलाएं सशक्त हो रही हैं।
महिलाएं समाज का अभिन्न अंग है. इन्हें सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश के निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को केंद्र में रखकर कई कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और वित्तीय स्वावलंबन आधारित योजनाओं के लाभ महिलाओं को मिल रहे हैं. सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और वर्ष 2023 में लिंगानुपात दर 947 की तुलना में वर्ष 2024 में बढ़कर ये दर 964 हो गई है. ये सकारात्मक बदलाव दर्शाता है कि समाज में लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव हुआ है. राज्य सरकार वंचित वर्गों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है. सरकार के इन प्रयासों से अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां भी सम्मान और खुशी के साथ जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर रही हैं. प्रदेश में विधवा पुनर्विवाह योजना के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. महिला सशक्तिकरण की दिशा दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 में संशोधन कर बेटियों को अलग पारिवारिक इकाई मानते हुए बेटों के बराबर अधिकार दिया है। अब किसी भी परिवार की अधिकतम स्वीकार्य भूमि सीमा की गणना के लिए बेटियों को भी अलग इकाई माना जाएगा। राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी निर्णय से महिलाओं के संपत्ति अधिकारों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इस योजना के तहत सरकार बीपीएल परिवार में पैदा होने वाली दो बेटियों के लिए बीमा कंपनी के पास 25,000 रुपए जमा करवा रही है, जिससे जहां माता पिता को 2-2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिल रहा है, वहीं जमा की गई राशि बालिका को बालिग होने पर या स्वेच्छा अनुसार 27 वर्ष की आयु तक प्रदान किए जाने की भी सुविधा मिल रही है। कामकाजी महिलाओं की सहायता के लिए भी सरकार सोलन, बद्दी, पालमपुर, गगरेट और सोलन के ही मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे प्रमुख स्थानों पर इस वित्त वर्ष में 132 करोड़ रुपए की लागत से 13 कामकाजी महिला छात्रावास निर्मित कर रही है, जिससे कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित, किफायती और सुविधाजनक आवास की सुविधा उपलब्ध होगी। निश्चित रूप से सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर किए जा रहे इन प्रयासों से सशक्त समाज का निर्माण हो रहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
Prime Minister Narendra Modi has said that the ideals of Sri Narayan Guru are a great treasure for all of humanity. The Prime Minister was speaking at the centenary celebration of the historic conversation between two of India's greatest spiritual and moral leaders, Sri Narayan Guru and Mahatma Gandhi, held in New Delhi today. He described the revered social reformer as a beacon of light for those committed to serving the country and society. And he said that the historic conversation between Sri Narayan Guru and Mahatma Gandhi, held a century ago at Shivagiri Math, gave new direction to the freedom movement and continues to inspire India's journey towards Viksit Bharat. We have a report.
On March 12, 1925, the historic meeting between Sri Narayan Guru and Mahatma Gandhi took place at Shivagiri in Verkala. Their discussion focused on Vaikyam Satyagraha, non-violence, the abolition of untouchability and the upliftment of the oppressed classes. Both leaders had an in-depth conversation about the inequalities that existed in society due to the caste system and the practice of untouchability. Guru also emphasized that education and economic resources were essential for the upliftment of the lower caste. Mayusha, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। भाला फेंक विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा आज रात चेक गणराज्य में प्रतिष्ठित ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 एथलेटिक्स मीट में भाग लेंगे। यह स्पर्धा भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगी।
Yes, and on to cricket. In the Anderson Tendulkar Cricket Trophy, England was 76 for no loss a short while ago against India on the fifth and last day of the first test at Headingley, Leeds. Hosts England are chasing a target of 371 runs. Yesterday, India were bowled out for 364 in the second innings, following a late collapse in the final session. The innings featured outstanding centuries from KL Rahul and Rishabh Pant. Earlier, England were bundled out for 465 runs in the first innings in reply to Team India's first innings total of 471 runs. And moving on to some business news, the benchmark domestic equity indices retreated from the day's high and ended with a modest gains in a volatile trade today as uncertainties in West Asia conflict kept investors on edge. The 30-share index of the Bombay Stock Exchange Sensex advanced 158 points, almost 0.2%, to close at 82,055 after hitting an intraday high of 83,018. The National Stock Exchange Nifty 50 added 72 points, almost 0.3%, to settle at 25,044 after hitting an intraday high of 25,317.
और अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस।
We remember nationalist historian Vishwanath Kashinath Rajwade, who was born on the 24th of June 1863 in Raigad district of Maharashtra. Popularly known as Itihasacharya Rajwade, Vishwanath is considered to be one of the first historians to undertake an immense research of glorious Maratha history by visiting hundreds of villages and historical places all over India. He was greatly influenced by scholarly teachers like Ramakrishna Gopal Bhandarkar, Vishnu Shastri Krishna Shastri Chipurunkar, lexicographer Parshuram Tatya Godbole and Kavya Itihas Sangrahkar Sane. However, he was a big critic of the model of higher education in India, which, according to him, did not help original thinking or research.
Rajwade did not seek British employment, which he considered was indirect slavery. He started translating world classics in Marathi and started a monthly called Bhashantar. Through the magazine, he brought works of Western philosophers and scholars such as Plato, Aristotle and Edward Gibbon, and also Indian scholars like Shankaracharya in Marathi.
Rajwade was a rare combination of a researcher, history grammarian, social scientist and etymologist. He was unhappy with Maratha history books written by British historians that tried to establish conqueror's view of subjugated people. Rajwade wanted to present an unbiased point of view. To this end, he toured the whole of Maharashtra region and studied art, architecture, iconography, social life, language, literature, customs and folk traditions of the region. He published 22 volumes of Marathancha Itihasachi Sadhane, Sources of the History of Marathas.
He got the oldest commentary on Gyaneshwari and brought out its earliest grammatical form. He edited Radha Madhav Vilas Champu by Jayaram Pindye, dating to Chhatrapati Shivaji's father's time, which has special bearing on the history of contemporary Karnataka. He explored etymology, the study of the origin of words, and discovered several old rituals and practices.
In 1910, Rajwade founded Bharat Itihas Sanshodhak Mandal at Pune and kept all his works and historical papers in the custody of the Mandal. A sage-like scholar known for austere habits and long hours of work and incessant travelling, Rajwade died on the 31st of December, 1921. We also remember Martyr Ranjit Singh, who was born on the 24th of June 1924 at Ludhiana, Punjab. Initially, Singh served in the British Indian Army but joined the Indian National Army in 1942 in Singapore and served as sepoy in the Gandhi Brigade. Ranjit Singh confronted the Allied forces in Arakan, Myanmar and died fighting them in 1944.
We also remember Kamruddin Khan, who participated in the First War of Indian Independence.
Khan was captured by company troops in the course of their attacks and put on trial for aiding and abetting the rebellion against the British. He was sentenced to imprisonment for 10 years with hard labour in iron. Kamruddin Khan died in captivity on the 24th of June 1859 in the Andaman Islands. We salute the brave son of the soil.
आज ही के दिन भारत ने एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी, श्रमिक नेता और देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी को खो दिया था। आजादी के बाद वीवी गिरी ने भारतीय श्रमिक वर्ग की आवाज बुलंद की। वे देश के पहले श्रम मंत्री बने। उनका विश्वास था कि मजदूरों की भागीदारी के बिना लोकतंत्र अधूरा है। उनकी नीतियां, उनके विचार और उनके सिद्धांत आज भी देश के लोकतांत्रिक ढांचे को दिशा देते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। वीवी गिरी की जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि सेवा, संघर्ष और समर्पण ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है।
Yes, and William Harrison Jack Dempsey was born on this day in 1895, nicknamed Kid Blackie and the Manessa Mola. He was an American boxer who competed from 1914 to 1927 and world heavyweight champion from 1919 to 1926. One of the most iconic athletes of his era, Dempsey is ranked 6th on the Ring magazine's list of all-time heavyweights.
आज पुण्यतिथि है महान शास्त्रीय नृत्यांगना पद्मश्री संजुक्ता पणिग्रही की। संजुक्ता पणिग्रही ओडिसी नृत्य की वह अद्वितीय साधिका थी जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि विश्व पटल पर इस नृत्य रूप को नई पहचान दी।
Andreas and Geoffrey Arnold Back was born on this day in 1944. He was an English musician. He rose to prominence as a guitarist of the rock band The Yardbirds, and afterwards founded and fronted the Jeff Beck Group and Beck, Bogart and Appice. In 1975, he switched to instrumental style with focus on an innovative sound, and his releases span genres and styles ranging from blues, rock, hard rock, jazz, fusion, and a blend of guitar, rock and electronica. Let's listen into his hit track, The Train Kept Rolling. And Manayangath Subramaniam Vishwanathan was born on this day in 1928, also known as MSV. He was an Indian music director, singer and actor who predominantly worked in Tamil film industry. Popularly known by sobriquet Melisai Mannar, which means King of Melody, he composed songs for more than 800 Indian films. Let's listen in to a hit track of his.
பாடாத பாட்டெல்லாம் பாட வந்தாள், காணாத கண்களை காண வந்தாள், பேசாத மொழியெல்லாம் பேச வந்தாள், பின் பாவை நெஞ்சிலே ஆட வந்தாள். பாடாத பாட்டெல்லாம் பாட வந்தாள்.
Yes, and Michael John Kells Fleetwood was born on this day in 1947. He's a British musician, songwriter and actor. He's a drama co-founder and lead of the rock band Fleetwood Mac. Fleetwood, whose surname was merged with that of the group's bassist John Mac McVie, the only two members to appear on every studio album during the band's run, to form the name of the band, was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame with Fleetwood Mac in 1998. Let's listen in to the band's hit track, Dreams.
Now there you go again, you say you want your freedom. Well, who am I to keep you down? Whistle and write that you should play the way you feel it.
Yes, and Pandit Omkarnath Thakur was born on this day in 1897. He was an Indian music teacher, musicologist and Hindustani classical singer, a disciple of classical singer Vishnu Digambar Paluskar of the Gwalior Gharana, and founder of the Akhil Bharatiya Gandharv Mahavidyalaya Mandal. He became the principal of Gandharv Mahavidyalaya Lahore and later went on to become the first dean of the music faculty at Banaras Hindu University. And also, Neha, I think Lionel Messi was born on this day in 1987.
जी, अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. उन्होंने अर्जेंटीना के साथ कई ट्रॉफियां जीती हैं और क्लब फुटबॉल में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. उन्होंने अपने करियर में खूब बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं.
Yes, he's an Argentine professional footballer who plays as a forward four and captains both Major League Soccer Club Inter Miami and the Argentina national team. Widely regarded as one of the greatest players in history, Messi set numerous records for individual accolades won throughout his professional footballing career, such as 8 Ballon d'Or awards and 8 times been named the world's best player by FIFA. He is the most decorated player in the history of professional football.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर. साथ ही आप हमारी मोबाइल ऐप newsonair पर भी हमारे कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं. नमस्कार.
नमस्कार.